अब साथ ही इसके अगली आयतों को देख लें तो एक से एक बात आगे निकलती आती है। पहले आयतें पढ़ेंगे फिर हम आगे देखेंगे। आयत 4, मा जअलल्लाह लिरजुलिन, नहीं बनाया अल्लाह ने लिरजुलिन किसी आदमी के लिए, मिन कल्बैन, दो दिलों में से, कल्ब से कल्बैन तस्निया ड्यूल, फी जौफी ही उसके पेट में। पहली बार सीधे तरीके से पढ़ें तो अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं रखे। पहले तो आप जरा इसकी लफ्जी खूबसूरती देखें। देखिए यहां लफ्ज रजुल क्यों आया है, इंसान क्यों नहीं आया? फिर जौफ का लफ्ज आया है, सीने का लफ्ज क्यों नहीं आया? किसी को याद है कि पीछे हमने बात की थी इस पर, याद है आप लोगों को? जिनको नहीं याद, देखिए यहां रजुल आदमी के लिए आया है, क्योंकि औरत पर प्रेगनेंसी के दिनों में 9 महीने ऐसे गुजरते हैं कि उसके जौफ, जौफ कहते हैं बर्तन को, पेट को, उसके पेट में दो दिल होते हैं, एक उसका और एक उसके बच्चे का। बात समझ रहे? ये कुरान की खूबी है। अब ये जब आप इन लफ्जी वजातों में जाते हैं तो आपको यकीन आता है ना, ये अल्लाह का कलाम है। समझ ही नहीं आती ली रजुलिन की क्या जरूरत थी, जौफ की क्या जरूरत थी। तो लफ्जी एतबार से भी ये आयत बहुत परफेक्ट है। और जौफ कहते हैं खाली जगह को, यहाँ इससे मुराद सीने का अंदरूनी हिस्सा, जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं ना, जहाँ दिल होता है, बाएं जानिब दिल होता है। यानी अल्लाह ने हर इंसान के सीने में एक ही दिल रखा है। बस जब मुहावरतन हम कहते हैं ना, फुलां और फुलां के दिल यकजा हो गए, या फुलां का दिल फुलां के दिल से मिल गया, तो ये हम एक ऐसे मुहावरतन कहते हैं। दिल कभी भी किसी का नहीं होता। और फिल्मों में तो वो बहुत ही कहते हैं मैंने तुझे अपना दिल दे दिया, जरा खोल के उसका दिल देखे, उसका दिल भला उसकी महबूबा के पेट में चला गया, कोई भी नहीं होता। कितना झूठ है। मेरा सीना दिल चीर के देखो, इसमें तेरा नाम लिखा, चीरे जरा, फिर वो बाकी नहीं बचेंगे। यानी हम किस तरह का फिक्शन सिखाते हैं अपनी नस्लों को, इतनी झूठी बात है, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊं, मैं नहीं ला सकता। तो गोया के हकीकत होनी चाहिए बात, लेकिन यहां असल में दो तरह से बातें। बस कहते हैं कि मदीना में एक शख्स था, अल्लाह के नबी के पास आता, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता, अच्छा बन जाता। जब मक्का वालों से मिलता तो उन जैसा होता। तो किसी ने उसे कहा कि ये तूने क्या दो रूही पॉलिसी रखी हुई है, ड्यूल पर्सनैलिटी या डबल पर्सनैलिटी? तो कहता था मेरे जिस्म में दो दिल हैं, एक दिल मोहम्मद के साथ धड़कता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक दिल मेरा कारे मक्का के साथ धड़कता है। बाज कहते हैं इसमें उसका जिक्र है, और बाज कहते हैं कि इसका इशारा आयत के अगले हिस्से की तरफ है। वो क्या है, आइए देख लेते हैं। वमा जअला अज़वाजकुम उल्लाई, और ना ही इसने तुम्हारी इन बीवियों को जिनसे, ये जो लाई है ना, आप सिर्फ समझने के लिए समझ लें, खेलने वाली बात है। आप पढ़ते ना अल्लती, अल्लजीना, अल्लजी, अल्लजानी, ये अल्लाई उसी की खानदान का एक सी है, छह होते हैं उनमें से एक है। ये बहुत कम आया है, शायद वाहिद जगह है कुरान की। लेकिन यहाँ मुराद है जैसे अल्लती कहते हैं ना वो एक, तो अल्लाई वो सारी, ये मुराद है। वो बीवियां तुम्हारी जिनसे तुज़ाहिरूना, तुम जिहार कर लेते हो, मिनहुन्ना उनसे, क्या नहीं है वो उम्महातिकुम, तुम्हारी माँ। देखिए मैं दोबारा बोलती हूँ इस जुमले को, आप आयत के ऊपर नजर रखें क्योंकि इसका तर्जमा समझ नहीं आएगा अगर लफ्जों पे नहीं गौर करेंगे। वमा जअला अज़वाजकुम उल्लाई, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना, तुम जिहार कर लेते उनसे, क्या नहीं बनाया उम्महातिकुम, तुम्हारी माँ। अगर इस आयत का आप तर्जमा समझना चाहते हैं ना, आप अपनी आयत पे नजर रखिए, मैं बीच में से कुछ लफ्ज स्किप करूंगी। वमा जअला अज़वाजकुम उम्महातिकुम, बात वाज़े, हमने तुम्हारी बीवियों को माए नहीं बनाई, कौन सी, अल्लाई तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना, जिनसे तुम जिहार करते हो। ठीक है, जिहार की बात पीछे हुई थी, नहीं हुई, जिक्र हुआ था, आगे जाके इसकी डिटेल एक वाक्य भी आएगा। जिहार अरब जाहिलियत की एक तलाक थी, यानी तलाक की एक किस्म, जो जाहिलियत के दौर में मर्द अपनी बीवी को देते थे वो जिहार है। होता क्या था कि कोई शख्स जब अपनी बीवी से नाराज होता तो कहता अंति अलैया का जहरी उम्मी, अंति तू अलैया मेरे ऊपर, का मानद जहरी पीठ या पुश्त, उम्मी मेरी माँ की, यानी अब तो मेरे ऊपर अपनी माँ की पीठ की तरह हराम है। इशारा क्या होता था कि जैसे मैं अपनी माँ से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, तुझसे भी नहीं कर सकता, एक किस्म की यह तलाक होती थी। अब ये बात जब वो बोलते तो इस बोलने को वो तल्लाक बोलते, बल्कि तल्लाक भी कौन सी, तल्लाके मुगल्लस, गाड़ी थिक, गलीस का लफ्ज़ है ना उर्दू में, वही मुगल्लस दर मुगल्लस, यानी इसमें ना रजू का हक था ना वापस आने का हक था, हमेशा के लिए औरत हराम हो जाती थी। बास कहते हैं कि इस तरह के इस अमल करके मर्द उनसे बीवी का ताल्लुक ख़त्म करते थे, स्टिल उनके साथ रहते थे, तो औरत का जिस्मानी हक अदा नहीं होता था, और उनके अपनी तो और भी बीवियाँ होती थी, वो अपनी ख्वाहिश कहीं से भी पूरी करते थे। तो गोया कि औरत पर यह जुल्म था, बीवी होते हुए वो बेवा की हैसियत से घर में रहती थी। अल्लाह ताला ने इस कानून को तोड़ना चाहा, यानी 28वें पारे की पहली सूरत सूरह मुजादला पूरी इसी थीम पर है कि अल्लाह ने एक औरत खौला के नाम पर इस सूरत को रखा और उनके जरिए से ये बात खत्म कर दी। यहां इशारा बस इतनी बात है, असल बात अगली है कि माँ और बीवी एक नहीं हो सकती। तो जिस तरह एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते ना, तब एक मर्द एक औरत को अपनी या तो बीवी कहेगा या माँ कहेगा, ठीक है। और यहाँ एक ये भी जहन में रख लीजिए बात, जो इशारतन है आगे बात आ जाएगी उसमें भी थोड़ी सी, और वो क्या है कि किसी को खुद ब खुद कहना ये मेरी माँ ये मेरी बहन बनी हुई है, ये जायज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी माँ मौजूद है। नहीं भी है तो किसी के साथ नहीं करना, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इशारा है कि मुंह बोली माँ या मुंह बोली बीवी या मुंह बोला बेटा कुछ नहीं होता, क्योंकि वमा जाल अदियाकुम, और ना ही हमने वो बनाया है अदिया। अब इस लफ्ज को समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, वरना ये याद नहीं होता। अदिया ये क्या लफ्ज है, इसका रूट क्या होगा? दुआ। दुआ क्या होती है? पुकार। तो अदिया क्या हुआ? पुकारे हुए, बुलाए हुए, यानी अल्लाह ने नहीं बनाया तुम्हारे खुद से बुलाए हुए लोगों को, अब नाकुम तुम्हारे बेटे, बात समझे, यानी जिनको तुमने मुंह से कह दिया कि मैंने इनको बेटा बनाया हुआ है, वो अब नाकुम वो तुम्हारे बेटे नहीं बने, क्योंकि जालिकुम कौलुकुम बिअफवाहिकुम, ये तो एक बात है जो तुम्हारे अपने मुंह की है, यानी तुम्हारी खुद साख्ता बातों की अल्लाह के यहाँ कोई कानूनी हैसियत नहीं। किसी की माँ सिर्फ वही है जिसने उसको जन्म दिया, किसी शख्स का बेटा सिर्फ वही है जो उसके सुल्ब से पैदा हुआ, किसी की बहन वही है जिसने उसी कोख से जन्म पाया जिससे उदर पाया उसने, और जिसने उसी जगह से दूध पिया जहां से उसने पिया, यानी रजाई बहन हो सकती है, सुलभी बहन हो सकती है, इसके अलावा जुबानी कलामी रिश्ते नहीं चलते, क्योंकि वल्लाहु यकूलुल हक, अल्लाह हक बात करता है, सच बात करता है, वहुवा यहदिस सबील, और वही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत भी देता है। यहां से आप समझिए दो टोक अंदाज है, आगे अगला हिस्सा साथ था आता है, लेकिन इधर इतनी बात समझिए, फिलहाल जो बात है ना वो सिर्फ हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ही, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, वहां कहते हैं फलां को मैंने भाई बनाया हुआ है, फलां को मैंने बेटा बनाया हुआ है, उसकी इशारा है अडॉप्शन आई वो अगली आयत में आएगी। हम इस पे क्या कहते हैं, क्या मैं किसी को भाई बना, हम तो सारे भाई हैं, क्या किसी को भाई कहना और भाई बनाना इसमें फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए एक है कि आप अपने बेटों के दोस्तों को कहती हैं बेटा आ जाओ बेटा खा लो बेटा बेटा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन इस आड़ में अब आप उससे सतर हिजाब के मसाइल से अब आरी हो जाए कि ये तो मेरे बेटे की उम्र का है, तो क्या हुआ, पर्दा कर पड़ेगा। आप जैसे अपने बेटे की खिदमत करती हैं आप अपने बेटे के दोस्त की करें, लेकिन हिजाब और निकाब के अंदर, उसको गले नहीं मिल सकती, उसके सर पे प्यार नहीं कर सकती, अकेले में उसके साथ गाड़ी में सफर नहीं कर सकती, रात को उसको घर में नहीं बुला सकती कि बेटा बेटा, ये हदें हैं। इसके अलावा बी नाइस, भी खाएं खिदमत करें खाना खिलाएं उसको गिफ्ट्स भेजें, वो तो आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या हम बहनें किसी को भाई बना सकती हैं, ये फला मेरा भाई बना हुआ है, इसको आज काट के रख दीजिए, ये जुमला हम बहुत नासमझी में बोलते हैं, फला मेरा भाई बना हुआ है, नहीं बनते। मैं ऐसी एक सिस्टर को जानती हूँ कि जो किसी से वाकई भाई बना हुआ था, लेकिन हालात का एक ऐसा चक्कर चला कि वो उसका भी शौहर था, शादी करनी पड़ी उसको, वो लड़की इतने चक्करों में थी मसाइल के अंदर कि फिर उसी लड़के ने ऑफर किया कि फिर मैं इससे शादी करता हूँ अगर कोई नहीं करता, या वैसे कर ली हो गया आई डोंट माइंड, तो उसकी शादी उसके माशाल्लाह बच्चों की माँ है आज वो, तो कोई गुनाह की बात भी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए ये एक बड़े अचंभे की बात थी, बड़ी अजीब बात थी कि अच्छा इसकी उससे शादी हो गई, हम तो इसको भाई समझते हैं, उसको स्कूल छोड़ना कॉलेज छोड़ना उसके काम करने दर्जियों पे जाना लेना देना वो सब एज अ ब्रदर करता था, लेकिन वो ब्रदर नहीं था। तो ये मुंह बोले रिश्ते कुछ नहीं होते, ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसे अवॉइड करें, आप और मैं भी, आप अपने लिए समझ लें कि खानदान का कोई बेटा है, जैसे आपके नंदों के बेटे हैं, आपके देवरों के बेटे हैं, या ऐसे कजिन्स के बच्चे हैं, आप प्यार कर सकते हैं उनसे, मोहब्बत जैसे केयर करनी है सब है, लेकिन शरई पाबंदियां नहीं टूटेंगी। इसी तरह आप किसी को बेटा कहती हैं, एक तो है ना आपका बेटा नहीं है, दूसरा के बेटे हैं फिर भी कहती हैं, तो बी काइंड, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके साथ फिर वो महरम वाला और गैर महरम वाला फर्क रखेंगे। इसके बाद अगली जो आयत है ना उसमें अडॉप्शन की थोड़ी बात की तरफ मजीद इशारा है, इसको देखते हैं। आयत नंबर 5 है, उदउहुम, पुकारो उनको, किनको, ले पालक बेटों को या मुंह बोले बेटों को, ली आबा इहिम, उनके बापों के नाम के साथ, ली यहाँ निस्बत का है, अपने बेटों को यानी जिनको तुमने पाला है उनको अपने उनके बापों के नाम से पुकारो, क्योंकि हुआ अक्सतु इंदल्ला, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ पर मबनी है। अच्छा, लेकिन फइल्लम तालमु आबाअहुम, फिर अगर तुम उनके बापों को जानते ही नहीं हो, नाम नहीं पता, कोई किडनैप किड्स हैं, कोई झूले में डाल गया, कोई हॉस्पिटल से मिल गए, किसी के नसब को नहीं जानते, तो फिर फइख्वानुकुम फिद्दीन, फिर वो भाई हैं तुम्हारे दीन के, व मवालीकुम, और तुम्हारे मवाली हैं, दोस्त हैं। यहाँ नोट कीजिए, फिर भी नहीं कहा कि अपना नाम दे दो। उलमाए कराम कहते हैं कि यहाँ फइख्वानुकुम फिद्दीन से इशारा कर दिया कि नाम तुम अपना नहीं लगा सकते, लेकिन उसका दीन अपना दीन कर लो। किसी क्रिश्चियन का बच्चा है, जीव का बच्चा है, किसी खुद को कुछ भी ना कहने वाले का बच्चा है, वो तुम्हारे पास आ गया, नाम तुम उसको अपना नहीं दोगे, लास्ट नेम, सर नेम, फैमिली नेम तुम अपना नहीं दोगे। हाँ, उसका दीन बदल सकते हो, हाँ वो दोस्त है तुम्हारा। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि बास तब ऐसा होता है कि किसी बच्चे की वल्दियत का पता ही नहीं होता। आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान तकसीम हुआ था तो उस दौरान कई वाकयात आए थे, महाजरीन की एक ट्रेन में सब लोग मारे गए, एक बच्चा जिंदा कहते हैं रह गया, किसी को पता ही नहीं है किसका है, अब किसी ने उसको पाल लिया, बाप बाप का नहीं पता, मिसाल है, हो सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, फीमा अख्ता तुम भी, जो कोई खता हो गई तुमसे इस मामले में, यानी जानते बूझते नहीं, अनजाने में मिस्टेक हो गई, पता नहीं था वो हो गई तो और बात है, वलाकिन माता मदद कुलूबुकुम, मगर जो कुछ तुम अपने दिलों के इरादों से करोगे, यानी उसका हिसाब तो जरूर होगा, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब इस एक आयत में बहुत वाज इशारे हैं, पहले तो इसको समझिए वाकये की नौयत के अतबार से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजे मुख्तरमा थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके एक कजन थे हकीम बिन हिजाम, उनका नाम आता है, वो एक बच्चे को खरीद कर लाए, जिस बच्चे का नाम जैद था, जैद बिन हारिसा। जैद जो थे नस्ली गुलाम नहीं थे, जैसा कि उस दौर में असल दर्द नस्ल गुलामी होती थी, एक मौके पर ये अपने बाप से बिछड़े, फिर अगवा होते होते इधर से उधर होते हुए ये हकीम बिन हिजाम के पास आ गए, उन्होंने इनको खरीद लिया उस वक्त के रिवाज से। जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने हजरत खदीजा को गिफ्ट कर दिया, लोग गिफ्ट्स में तोहफे में देते थे उस वक्त में ऐसे बच्चे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो आपने हजरत जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में दे दिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एज अ गिफ्ट मिले तो आपने उनको आजाद किया कि मैंने गुलाम नहीं इसको रखना, और उनको कहा कि ये मेरा गुलाम नहीं बल्कि ये आज से मेरा बेटा है। लोग हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अब यहां जरा इस आयत को पढ़ते हुए आप जैद के दिल पे जरा चोट जो पड़ी होगी इस आयत से उसको देखिए, सब तरफ वो जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारे जाते थे, आपका नस्बत थी, लेकिन अल्लाह ने जहां कह दिया कि अल्लाह तो हक कहता है, ये हुक्म आया तो इसकी चोट पड़ी, तो कह दिया कि अब इनको आप जैद बिन मोहम्मद कह सकते हैं। कितनी बड़ी चोट पड़ी होगी जैद के दिल पे, इतनी प्यारी, मैं सोचती हूँ दुनिया की सबसे प्यारी नस्बत से महरूम हो रहे हैं। एक तो होता है ना अपना बच्चा, जैसे अगर हजरत फातिमा अल्लाह के नबी की बेटी थी तो वो तो अल्लाह ने दे ही दी, वो तो उनका नसीब वो लेके पैदा हुई, जैद को तो ये ऑनर मिली और फिर छिन गई। ये है असल में सूरत का थीम, इत्तकिल्ला वला तुतील काफरी नवल मुनाफिकीन। अमली जिंदगी में जब इमोशनल ट्रॉमा से गुजरो, जज्बाती धचके पड़े, तुम्हें फलां बड़ा प्यारा लगता है, तुम तो उसको बेटी समझती हो, तुम तो बेटा कहते हो, तुम्हारे लिए तो वो भाई जैसा, जो मर्जी कहते फिरो, अल्लाह ने अपना फैसला बता दिया, तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। अब जब यह आयत उतरी, लोगों ने दोबारा जैद बिन हारिसा कहना शुरू कर दिया। ये सोसाइटी इस्लाम चाहता है। अगर आप और मैं चाहते हैं ना कि आज के दौर में फिर इस्लाम जिंदा हो, तो उसके लिए ये सोसाइटी बनेगी, समेना वताना। अगर उन्होंने मुंह को लगे हुए शराब के जाम छोड़ दिए थे ना शराब की हुरमत पे, तो नस्बतों के जाम भी तोड़ दिए थे। हमारी तो अपनी मर्जी नहीं खत्म होती, पसंद नापसंद, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए हराम कर दिया हकीकी बाप के सिवा किसी की तरफ अपने आप को मंसूब करना। रिवायत है बुखारी मुस्लिम और अबू दाऊद में हजरत साद बिन वक्का से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा, दर हालांकि वो जानता हो वो शख्स इसका बाप नहीं, इस पर जन्नत हराम है। और याद रखिए इस मौजू पे बहुत सारी हदीसें हैं। चलिए अब हम इस पे जरा सी बात कर लेते हैं। कैसे? आप देखिए कि एक होता है किसी के बच्चे को पालना और एक होता है अडॉप्ट करना, बहुत फर्क है दोनों। पालना जायज है, आप वैसे घर पर रहते हैं अपने भाइयों के बच्चों को पालती हैं, टेक केयर करती हैं, खाने खिलाती हैं, उनके कपड़े बदलती हैं, आपके अंदर के जो ममता के जज्बात हैं वो पूरे होते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आपकी दोस्त है, उसकी आप हेल्प कराते हैं, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, आप उसकी मदद करते हैं, इट्स ओके। असल जो खराबी है वो क्या है कि किसी का बच्चा लेकर फिर उस बच्चे का नाम भी बदल दिया जाए और छुपाया जाए। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है और आजकल हम नॉर्वे में पिछले 2-3 वीक में इस मौजू पे इतनी ज्यादा बात हुई है, क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट बना कुरातुल्लैन के नाम पर, उसके अंदर मेन चीज ही है कि ऐसे बच्चे जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या हमारे मुस्लिम बच्चे नॉन मुस्लिमों के घरों में क्यों पले। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, इतनी मैंने इन इस दिनों में बातें सुनी है ना इर्द गिर्द में, कि जिस तेजी से अब मुसलमानों की जनरेशन को ये खत्म कर रहे हैं, यू कैंट बिलीव। 70% बच्चे बारनेवान कहते हैं वहां बच्चों की पुलिस को, जैसे यहां भी बच्चों की पुलिस है, नॉर्वे में बारनेवान कहते हैं। 70% बच्चे वहां पाकिस्तानी मुस्लिम्स के हैं, बात बेबात बच्चों को पकड़ रहे हैं। क्यों? कि इनको अलग कर, और जब पकड़ते हैं ना फिर दूसरे मुस्लिम्स को नहीं देते, सेम शहर में नहीं देते, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, और नॉन मुस्लिमों को दे रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये हमने वहां ये एक सिस्टर से भी काफी डिटेल से मीटिंग हुई, यूएन है कि गालिबन कौन जो सारे मैटर्स को डील कर, यूनाइटेड नेशन है मेरा है, उनका रूल है कि अगर किसी का बच्चा अगर किसी को अडॉप्शन में देना हो तो सबसे पहले उसकी फैमिली को देखो। ये बात तो मैंने स्वीना के मुंह से भी सुनी है कि ये बच्चे का ह्यूमन राइट है कि उसको उसके साथ रखे, और अगर बहन भाई भी सारे हैं तो सब एक जगह हैं, बिल्कुल इससे ऑपोजिट करें, एक जगह दो बच्चों को नहीं रख रहे, 6 बच्चे एक माँ के सारे बारने मान ले चुकी है, और वो बच्चे फिर इकट्ठे 6 एक जगह नहीं जाएंगे, वो 6 डिफरेंट फैमिलीज में, और किसी को एक दूसरे का पता नहीं, दरिंदगी नहीं है। मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो मुझे वही कुरान की आयत याद आ रही थी कि ये बेहोना बना कुमा यस्तुना निसा कुमा फी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम। ये सब लाइव बातें जो हम मैं सुन के आई हूँ वो आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से उन्होंने अपनी नस्लों को प्रवोक किया, अपने लोकल्स को, के बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। इतनी मुराद देते हैं नॉर्वे में बच्चा पैदा होने वाले पे, मेरा ख्याल है कि शर्म आती है लोगों की कहानियां सुनाते हुए जिस तरीकों से लोग पैसे उनसे खा रहे हैं। यहां भी होगा, मैं वहां का नाम इसलिए ले रही हूं कि मैंने वहां से बात सुनी है, तो कुफर ही है। अपने औरतें अपने लोग बच्चा पैदा करने को फिर भी तैयार नहीं है। जब उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं हो पा रही, तो उन्होंने सोचा कि ये तो चंद सालों में ये मुल्क मुसलमानों का हो जाएगा। ये लेटेस्ट किस्म की स्लेवरी है कि अब इन मुसलमानों के बच्चे पैदा होने से तो हम रोक नहीं सकते, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इनके बच्चे पकड़ते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंसीज हैं जो मुसलमानों के बच्चों पर नजरें रखती हैं और पेरेंट्स के जरिए। अभी एक सिस्टर थी तो उन्होंने बताया कि किसी बच्चों के स्कूल में काम करती हैं, कहती आज सारा दिन लगाकर बच्चा जो नया है उसको वो फोन नंबर याद कराए, छोटा सा बच्चा, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी कहें तो तुमने इस नंबर पे फोन करना है। कहती शुरू के जो दिन होते हैं, जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि मैं बदल ना दूँ, क्योंकि मैं तो मेमोरी से कर रही हूँ ना, लेकिन वो साथी जब सुनाते हैं ना रूह कांप जाती है। और ये ट्रू, और ये चारों तरफ हो रहा है। अब जब उन बच्चों को दूसरी जगह ले जाएंगे तो उनके नाम चेंज होंगे। अब सूरत हाल क्या है इधर इस आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसी के बच्चे को दूसरे का नाम नहीं दे सकते। अब मैं इसको आपके साथ इस तरह डिस्कस करती हूँ, जो केस हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं उसी को ले लें। क्या मुसलमानों के बच्चे मुसलमान लें, कौन लें? और ये यहाँ नॉर्वे की बात है, पाकिस्तान की भी जो सुनी है वो भी बता देती हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग बच्चे यतीम हो जाते हैं, नॉन मुस्लिम मिशनरीज, उन्होंने वहाँ ऐसे यतीम खाने बनाए हुए हैं कि वो आके मुसलमानों से उनके बच्चे लेते हैं और उनको हथेली के छाले बना के पाल रहे हैं। वो बच्चों को लेते हैं और पालते हैं कि हम लेंगे, और जब वो लेते हैं तो उनको अपने दीन पे ले आते हैं। और आपको पता है कि रिलीजन के नाम पे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मसला खड़ा करते हैं। फिर एक कोई ब्रदर हैं, उनके बारे में मैं सुन रही थी, पाकिस्तान में उन्होंने एक जगह पे एक उनकी बहुत बड़ी ज़मीनें थी, उन्होंने वहाँ एक छोटा सा गांव या बस्ती आबाद की है राशिदाबाद के नाम पर। वहाँ वो अब मुस्लिम्स के बच्चे उनसे वापस लेकर रख रहे हैं, और वो एक खास सर्टन एज के लड़के, ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े ना लड़कियां, रिसोर्सेज के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो वहां उनको इतने आला स्टैंडर्ड पे रख रहे हैं, उनकी तालीम तदरीस, वहां साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, उनको तरबियत देते हैं कि यतीम बच्चों के जज्बात क्या होते हैं, उनको कैसे डील करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अपने मुल्कों में कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब ये सूरत हाल हो तो क्या किया जाए? फैखवान को फिर दीन, जिस बच्चे को आप इस तरह के केसेस में लेते हैं, यानी अभी हमने ये जो पिछले 2 वीक में वहाँ मूवमेंट किया उसमें हर दर्स के बाद सिस्टर जो भी के कुरतुलैन प्रोजेक्ट की एडमिन से वो साथ जाती थी, तो बाद में मैं उनको मौका देती थोड़ी सी बात करने का, तो वो यही लोगों को कहती थी कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। लोग सोचते हैं कि इसके साथ ही ये चंदा मांगेंगे कि अब हमें पैसे दे दो। हम साफ कहते थे पैसे नहीं हम मांगने आए, हम चाहते हैं कि आप इसमें अपनी स्किल्स दें। आप में से जिसने कभी बच्चों की व्यापार निवान पढ़ा हुआ है या जो कुछ भी लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हैंडफुल वॉलंटियर्स की हमें लिस्ट मिल जाती थी एंड पे, कई नए थे क्योंकि हम तो नए इस फील्ड के, कोई पहले से कर रहा है तो उनको साथ लगा के करके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आप दुआ करेंगे अल्लाह की कोशिशों में बरकत दे। ये कब होगा लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर चलें। इतने ज्यादा फितनों में हमारे मुसलमान कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो हम खुश इसलिए हैं कि हमें नजर कुछ नहीं आ रहा और हम खा रहे हैं, और जितने अंदर रोड़े पत्थर खा रहे हैं साथ साथ, ये मैं नहीं पता हमारी नस्लों पे जुल्म है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसमें एक मेन चीज हम लोगों से ये लिखाते थे कि आप मुस्लिम, जैसे मैं आपको भी कहूँ आप सब मुस्लिम हैं, बल्कि वहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक सेमिनार सा रखा हुआ था हमारे स्कूल के करीब ही, तो उसको एडवर्टाइज करते हैं कि मुस्लिम पेरेंट्स को वो प्रवोक करते हैं कि अगर आप में से कोई चाहता है कि ऐसे किसी बच्चे को ले तो आए और इधर हमें अपना नाम लिखाएं। और सर्द मोहरी की हद बता दूं, हमारे मुसलमान वहां जाते भी नहीं है। बच्चे लेना चाहें चलो कोई नहीं, बच्चा क्या खाएगा, डर क्या है कि एक दफा बारनेवान से एसोसिएट हो गए तो हमारा सारा घर ही उनकी नजरों में आ जाता है। फिर इस पे बारनेवान वालों से लोगों ने बहसें की हैं कि आप पहले अपना खौफ कम करें, आप तो पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, पता चले वो किसी का बच्चा लेके आए आपने उनके भी ले लिए, आप तो दिन रात उनके घर पे आएंगे। तो उन्होंने इस बेस पे गवर्नमेंट पे तनकीद की है कि आपको जरा अपने आप को नाइस बनाना चाहिए। उन्होंने इसको रियलाइज भी किया है कि लोग क्यों नहीं आते बच्चे लेने आपसे, क्योंकि आप फिर बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स की लिस्टें बनवाते हैं, जैसे आप मैं कोई भी, इवन मुझे इस मुल्क का नहीं पता, किसी को भी बच्चा लेना है वो उस लिस्ट में गवर्नमेंट को अपना नाम लिखा देते हैं कि कोई बच्चा हो तो मुझे जरूर पूछे क्या लेना है, लड़का लेना है लड़की लेनी है किस एज की। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शऊर बेदार कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों में जाकर कि कभी आपको मौका मिले तो इसको दीन समझ के ले लें। खाएगा क्या खाएगा वो बच्चा, और यकीन करें हुकूमत पैसे भी देती है, लेकिन असल बात यह कि जब हमारे दिल में इसका दर्द होगा तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो प्रमोट कर चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि जब हमने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में कोई बच्चा ले लिया तो क्या करें? सिंपल सी बात है जो अल्लाह ने कह दी कि बाप का नाम नहीं बदलेंगे। बहुत दफा लोग छुपाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चों को अपना नाम दे दें। अब मैं इसके साथ ही दूसरा भी इसमें केस ले लेती हूँ कि जो अपने लोग हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, जो कोई भी हम जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्या करें? क्या हम किसी का बच्चा ले सकते हैं? फिर क्या हम उसको अपना नाम दे सकते हैं? तो सिंपल सी बात बताऊं आपको, सबसे पहले याद रखें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बच्चा आ जाए तो आप खुश भी रहे। बच्चों वालों से पूछिए वो कितने को खुश हैं और कितनी लाइबिलिटीज है, इससे इज्तनाब करें। इस वक्त को किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाएं। जो बच्चे वाले हर वक्त उजर रखते हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, आपको अल्लाह ने उस उजर से पाक रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मजबूरियां आपकी नहीं है। आप इस वक्त को किसी और खिदमत में लगा दें। आप कहते दिल में जज्बे बढ़े, ममता बदलती है, किसी के बच्चे को प्यार कर लें। बहुत सारे बच्चे हैं शहर में, आप देखिए हर वक्त तो बच्चा पालना कोई नहीं पसंद करता। बच्चा तो थोड़ी देर ही अच्छा लगता है ना, खेल लिया, गुदा लिया, प्यार कर लिया। आपके भाइयों के, दोस्तों के, सहेलियों के बच्चे जाएं, उनको फीड करें, उनके कपड़े ले लें, उनको खिलाएं पिलाएं, जो अपना करना है दिला करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप कहते हैं नहीं लेना है, तो फिर क्या करें? पहली बात, सबसे फर्स्ट थिंग है, पूरी कोशिश करें, अगर तो फैमिली में लेना है, वैसे तो नहीं लेना चाहिए। वो बच्चा जिसका पता है आपको, या उस बच्चे को भी कल पता चलेगा, उसको ना ले, गैर बच्चा ले, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले ले, पाकिस्तान में ईदी सेंटर है, ये है, वो है, किसी को भी कह दें कोई देना है बच्चा दे दे, ले ले, लिखा के उसके बाद उसका मामला खत्म है। उसके बाद घर आकर कोशिश करे, जो भी लेने वाला कपल है, कि उसकी बीवी उसको ट्राई करे फीड करने की। ऐसे मौजजे होते हैं अल्लाह ताला के घरों में, कि एक हमारी अपनी भी कोई क्लोज फैमिली की ये बात है कि काफी साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं था, तो बस लोगों की जिंदगी का और मकसद जो कोई नहीं रह गया, और दौलत भी इतनी बेशुमार है, तो हर वक्त वो टेंशन और स्ट्रेस, और जी बाकियों के तो मेरे नहीं है। खैर किसा मुख से बाहर के मुल्कों से भी इलाज कराया, अल्लाह ने नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा हम अडॉप्ट करेंगे, किसी जगह उन्होंने कहा हुआ था। तो कहते हैं कि ये एक शहर में थे पंजाब के, और इस्लामाबाद से उनको फोन आया कि अगर हमें एक बच्ची मिली है, आई है बच्ची, अगर हमें और भी लोगों ने लिखाया हुआ ना, आप में से जो सबसे पहले आएगा हम उसको बच्ची दे देंगे। ये सुबह फजर के करीब कहते हैं इनको मैसेज आया, ये मियाँ बीवी जो है और भी जो थे, कहते हैं कि फौरन पहुंचे, इनके नसीब में थी, अल्लाह ने इनको दी। कहते कोई पठान बच्ची थी, बहुत खूबसूरत, इन्होंने नहीं बताया किसकी, बस ये बताया कि वो रखना नहीं चाह रहे, उनके और भी बहुत बच्चे हैं। नसीब जब जागते हैं, ये उस बच्ची को लेकर आए हैं। उसके बाद आप देखिए, इनके लिए तो ऐसे ही था जैसे एक वली अहद मिल गया ना, बहुत अल्ट्रा दौलतमंद खानदान है। किस्सा मुख से अल्लाह का हुक्म देखिए कि उस औरत ने घर आके उसको ऐसे ही चुप कराने में साथ लगाया, अल्लाह ने उस औरत को दूध दे दिया। मैंने कभी नहीं सुनी थी ये बात, जहन में हमेशा जाता है कि दूध का ताल्लुक बच्चे के पैदा होने से, आज वो उसकी मुंह बोली बेटी भी है, उसका शौहर उसका बाप, अब वो सगी बच्ची बन गई ना, वो तो बिल्कुल, अब अल्लाह कल उनको और भी बच्चे अगर दे देगा तो वो बच्ची उन्होंने ऐसे फूलों में रखी हुई है। वही वो जब कोई बैठे कहते हैं नसीब है, पता नहीं उसके बाकी बहन भाइयों के खाना भी नहीं, और वो उसको जरा कोई देखे उसकी शान, उसको उम्रे पे लेके गए बच्ची को, पता नहीं हज भी करा दिया क्या कुछ है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है ना, तो अपना दूध पिलवाएं। ना आ सके तो किसी माहरम का, आपकी यानी अगर बेटी ली है, ये भी आप समझ ले, अगर आपने बेटी ली है ना किसी से, तो फिर आप क्या करें कि उस बेटी को आप अपने ससुराल में से, यानी आपके शोहर के रिश्तेदारों में से किसी से फीड करवा लें। क्यों? कि फिर वो बेटी आपके शोहर की रजाई बेटी बन जाएगी ना, यानी मामू बन जाएंगे या चचा बन जाएंगे, समझते हैं ना आप इस रिश्ते को रजात के। और अगर आपने कोई बेटा लिया है, तो फिर आप अपने मायके में अपनी बहन या अपनी भाभी किसी इस तरह का दूध पिलाएं कि आप उसकी रजाई खाला या फिर फूफी बन जाए। लेकिन जो चीज नहीं करनी, किसी भी जगह नहीं करनी, बहन भाइयों से लिया है, गैरों से लिया है, उस बच्चे से ये छुपाना नहीं है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। होता क्या है कि बचपन में छुपा लेते हैं, रिश्तेदारों को भी कहते हैं ना बताओ, एक नई स्ट्रेस शुरू हो जाती है, बच्चा बड़ा हो गया, एक तो मियाँ बीवी में चपरस शुरू हो जाती है, रिश्तेदार भी नाराज होते हैं, बाज दफा उनको होता है कि ना बच्चा इनका होता तो फिर हमारे यहाँ तो यही तसव्वुर बन गया ना, जायदाद में भी हिस्सा देंगे, हालांकि उसका हिस्सा नहीं होता, तो वो फिर भाइयों में मसला है, जरा लड़ाई झगड़ा हुआ डर ही होता है कि खानदान का कोई दूसरा बंदा इनको ना बता दे, तो फिर उसमें खराब है। खुद प्यार से बता दें, कल पता चलना है आज बता रहे हैं। दूसरी चीज जो नहीं करनी, वो उसको अपना लास्ट नेम नहीं देना। अल्लाह ताला ने ये जो कहा ना वक्सत इंदल्ला, इसकी हिकमत भी समझ लीजिए। आप देखिए नंबर एक है कि आपने इसको अपना नाम दिया, अब आपका लास्ट नेम शेख है, आप शेख भी नहीं कहते, फैमिली नहीं, आप अपनी मिसाल अहमद नाम है किसी के शोहर का, आपने कोई बच्चा लिया, उसका नाम समझ लीजिए कि मोहम्मद रखा, तो उस बच्चे का नाम आपने मोहम्मद अहमद रख दिया, मोहम्मद अहमद शेख, सबको पता है आपका बेटा। पहली बात देखिए कि आज के दौर में जेनेटिकली कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि जो खानदान की बेस पे ही डिस्कवर होती है, वो आपका बच्चा है, कल आप किसी को नहीं बताते, कल अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी आती है, डॉक्टर या दूसरे लोग उसको आप समझ के आपके जेनेटिक कोड ढूंढते रहते हैं, वो कहीं और था। फिर एक दूसरा बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, शायद 10% ही हो, आपने तो नहीं बताया किसी और का बच्चा, कल उसकी रिश्ता ढूंढने गए बड़े होने पर, हो सकता है उसकी किसी महरम से शादी कर दें, इज इट पॉसिबल और नॉट। फिर तीसरी बात है कि एक दिन तो पता चलना ही है, बड़े होके लगेगा होगा, ज्यादा ट्रॉमा होता है, बचपन में बता दें, तरीके से बता दें, लेकिन उससे प्यार इतना करें कि बच्चे जो है वो उसके साथ रहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि उनके अब्बा का तो नाम ही नहीं पता, तो क्या करें? अपना ना रखें, उसके नाम के साथ कुछ ऐसे ही नाम रख दें, जैसे आपकी पूरी फैमिली के लास्ट नेम जो है वो आपको मिसाल है कि शेख हैं या अहमद हैं या मोहम्मद हैं, उस बच्चे का आप इब्राहिम रख दें, कुछ भी रख दें, फैखवान को फिर दीन, कोई इस्लामी नाम रख दें, अब्दुल्ला रख दें, कुछ भी रख दें, सेम नहीं रखना। इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है, और वो क्या है कि जो शादी के बाद औरतें अपना लास्ट नेम बदल लेती हैं, इसकी भी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि फातिमा, बोलिए आगे, फातिमा अली, फातिमा बिनते मोहम्मद, आयशा मिसिज मोहम्मद। कुछ लड़कियों को तो मिसिज बनने का शौक ही इतना होता है कि वो अपने नाम क्या छोड़े खानदान का भी उतार देती है। ये भी इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ है कि आप अपना नाम छोड़ के शौहर का लास्ट नेम लेते हैं। मैं ऐसी एक फैमिली को जानती हूँ कि शादी जब हुई तो वो रिवर्ट मुस्लिम है जो ब्रदर है, अब वो ब्रदर का जो नाम था तो उनके साथ उनका लास्ट नेम उनके बाप का लगा हुआ ना, जो सारी क्रिश्चियन फैमिली है अभी भी, लेकिन उस सिस्टर ने अपने नाम के साथ वो रीड फैमिली कर दिया या जो भी कर दिया। ये क्या बात है, आप एक औरत का अपने माँ बाप से उसके खानदान से ताल्लुक कैसे तोड़ सकते हैं? इससे अवॉइड करना चाहिए। अब आपके जहन में होगा, अच्छा जिन्होंने कर लिया अब क्या करें, पेपर वर्क हो गया। देखिए हराम तो नहीं है, उस दर्जे का गुनाह भी नहीं, लेकिन गैर मसनून अमल है। बातें कितनी है, बाप का नाम हमेशा एक, शादी हुई जाके आप बदल के आए, अल्लाह ना करे 2 साल में खटपट हो गई तलाक हुई, फिर बदलेंगे दूसरी शादी के साथ, उधर हुई अभी वहां भी कुछ बात नहीं बन सकी, अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो गया, तीसरी जगह शादी हो गई, अब हर 2, 4, 6 साल के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड तो नहीं बदलेंगे ना, और क्यामत के दिन हम बापों के नाम से उठाए जाएंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन मेरे जहन में, फिर आपके जहन में तो पूछ लीजिए, वलदुज़्ज़िना, पता ही नहीं है बाप कौन है, माँ का तो पता सबको ही होता है, तो फिर उस बच्चे को उस माँ का बच्चे के नाम से दिया जाएगा। मसलन जैसे आप ईसा बिन मरियम कहते हैं ना, तो फिर ईसा बिन फातिमा होगा या गुलाम, जो भी माँ का नाम, जानी के लिए कोड़े हैं, यानी जिना के जरिए से पैदा हुआ बच्चा, उसको भी नाम नहीं मिल सकता। मुझे ये बताइए कि अल्लाह सुब्हान तआला इतनी लंबी चौड़ी बातें क्या बताता है इसकी, इससे अच्छा नहीं था तस्बीह नमाज का तरीका बता दिया जाता सूरत अल अहज़ाब में, इतना पढ़ो इतना सवाब, इतनी रखते हैं इतने वजीफे। आज उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये, हम अल्लाह के दिए हुए कानून नहीं अपना रहे। इबादतें तो बहुत करना चाहते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस मौजू को यहाँ लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा कर दिया कि तुम ऐसे मामलात में ना पड़ो क्योंकि इससे खराबी पैदा होगी। और आप याद रखिए कि अल्लाह के हर कानून में हिकमत है। आपको इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग दिखी कि ये ज्यादती है, या कोई फायदा दिख रहा है कि दूसरे को नाम देने से? ये हो सकता है अकल कह दे नहीं, फिर बच्चा मिसफिट फील करेगा, बच्चा ये कर देगा, आइसोलेटेड होगा, तो वैसे भी तो देखिए ना, आपके बच्चे और आपके देवर जेठ के बच्चे दो मुख्तलिफ बापों के बच्चे हैं, वो भी तो आपस में खेलते हैं ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बात है और कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए इंसान को इसकी फिक्र करने की जरूरत है। कोई सवाल इसके बारे में आपके जहन में? जी
अगर बच्चा दे देते हैं सम फैमिली में, अगर जो जिसको भी बच्चा दे देते हैं, वो 20-25 साल के बाद पता चलता है कि ये तो करना ही नहीं था, लेकिन अब वो बच्चा वापस नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं?
देखिए बच्चा वापस लाने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चा उनका ही है जिनका है, बच्चा किसी का पाल सकते हैं। जैसे मुझे अपनी फैमिली के एक याद है कि उनकी बेटियां सिर्फ, और बेटियां तो दूसरे भाइयों के बेटे बेटियां दोनों भी हैं, तो जो उनकी छोटी बहू है ना, मैंने उनके मुंह से एक दो बार बल्कि ज्यादा ही सुना है कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो तो मैंने भाभी को दिया, घर में साथ ही रहते थे सब कुछ, तो देखना इसकी बहू आएगी तो मैं उधर लेके जाऊंगी, आज कुछ भी नहीं हुआ, रहते साथ ही हैं, जो जिसका है वो उसका ही है, जोड़ा तो सास का आपने ही लेना है, वो तो आप ताई को नहीं लेने देंगे ना। तो इस तरह की बातें अगर हैं तो बच्चे को क्लियरली बता दें, और इट्स नॉट अ बिग डील, नाम नहीं दिया हो तो आप पाल तो सकते हैं, कोई यतीम हो गया आपकी फैमिली में बच्चा, कोई गरीब है, जैसे देखिए नबी सल्लम ने भी तो हजरत अली को पाला था ना, तो अबू तालिब थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उस दौर में ये आम रिवाज था, तो बच्चा किसी का पाल सकते हैं लेकिन उसका नाम नहीं बदल सकते, और उसके साथ तकाजे जो हैं शरई का पाबंदियां उसको नहीं चेंज कर सकते। जी आप
किसी ने अपने बच्चे का नाम चेंज कर दिया है डॉक्टर करके, तो क्या ये गुनाह करता रहेगा?
जी उसको बदल दीजिए बिल्कुल। अब ये देखिए हमारे सामने जैद बिन मोहम्मद और जैद बिन हारिसा की मिसाल, एक ही शख्स के दो नाम, पहले वो कुछ थे फिर कुछ हुए फिर कुछ हो गए, कर सकते करना चाहिए ठीक है।